भजन अभी तक मैंने श्रीमद् भगवत गीता के ग्यारह अध्याय के पांच या छह श्लोक आपको सुनाए, जिसमें अर्जुन भगवान से मांग करते हैं कि मुझे अपना समग्र रूप दिखाइए, क्योंकि दसवें अध्याय में तो भगवान ने अर्जुन को सुनाया, क्या सुनाया कि मेरी अनेकों विभूतियां हैं और उन विभूतियों में जो मुख्य मुख्य विभूतियां हैं उनके नाम भी बताए थे। लेकिन आज क्या कहते हैं अर्जुन, आज कहते हैं कि मुझे अपना रूप दिखाइए। सुनने में इतना आनंद नहीं मिलता जितना देखने में मिलता, क्योंकि इसमें सभी इंद्रियां समग्र रूप से लग जाती है। तो अब मैं आपको श्री महाराज जी के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। आत्मकथा का एक भाग है बाबा का कुल्लू आगमन। प्रथम अलौकिक सत्य, बाबा कौन थे, कहां से आए, उनके माता पिता कौन थे, उनका गांव जिला कौन सा था, पता नहीं, बाबा ने कभी नहीं बताया। भक्तों ने भी कभी पूछना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें तो बाबा में दिव्य अलौकिक माँ की शक्ति के दर्शन होते थे। ऐसा लगता था मानो श्री राम कृष्ण श्री हनुमान शिव दुर्गा सभी शक्तियों के पूज्य थे बाबा। कई बार भक्तों ने बाबा के भीतर करना में स्नेह में माँ वत्सुता के दर्शन किए और माँ का वात्सल्य प्रेम भी पाया। कई बार बाबा में माँ के गुफा में माँ के स्थान पर बाबा के दर्शन किए, जिससे ये पता लगता है कि बाबा ही माँ है और माँ ही बाबा है। ब्रह्म उसकी अनंत शक्ति एक ही है। देवी भागवत में देवी द्वारा दिए गए उपदेश में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने देवी की स्तुति की, तब देवी स्वयं बोली, क्या बोली, देवी बोली, सदैकत्वम भेदो अस्ति सर्वदैवम मत्स्य च यो सौ सहामम ओसो भेदो अस्ति मति भीमात। अर्थात एकमात्र सत्य ही ब्रह्म है, उसमें और मुझ में भेद नहीं, जो वह है वही मैं हूँ, किंतु लोग मति के भ्रम के कारण ही मुझ में उसमें भेद समझते हैं। जो ब्रह्म है निराकार है वो ही ब्रह्म की शक्ति है। बाबा जी के कथानुसार बाबा सन 1963 में प्रथम बार कुल्लू आए थे। वे कुल्लू से लोस भी हुए चंबा पांगी तो माता वैष्णो देवी जम्मू भी गए थे। वैष्णो देवी के दर्शनों पांत आवाज आई, कुल्लू जाओ, बाबा भगवती उम्र की 10,000 वर्ष पुरानी गुफा है, उसका प्राकट्य करो और जिस माँ की खोज में तुम स्थान स्थान भटके हो वे कुल्लू में ही है। जिस आज्ञा को शिरोधार्य करके बाबा नंगे वदन नंगे पांव इस पावन धरा पर आए और इन्होंने समस्त विरोधों तथा तीनों तापों दैविक भौतिक और आध्यात्मिक का सामना करते हुए माँ भगवती उमा की आज्ञा का पालन किया। अब बाबा 1964 में पुनः कुल्लू आए, अखाड़ा बाजार में स्थित शिवालय के चौथे पर बैठ गए, वर्ष भर भीड़ से जन सेवा की, जहाँ बाबा जी की भेंट लाला साधु राम जी से हुई। दिनु राम जिन्हें बाबा नारायण कहते थे, उन्होंने भी प्रथम दर्शन बाबा जी के वही किए। भक्तों का कहना है कि बाबा जी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर के चबूतरे की सफाई आदि करके जन सेवा में लग जाते थे। इन दिनों अखाड़ा बाजार में पानी के नल नहीं थे, अतः बाबा जी व्यास नदी से जल भरते लाते और सड़क पर आने जाने वालों की दिशा शांत करते थे। एकादशी व पूर्णमासी के दिन रात्रि जागरण होता, प्रभात टेले ईश्वर भाई का कहना है कि वे भी इस जागरण में शामिल होते थे। बाबा जी उन्हें प्यार से मक्खन चोर कहकर पुकारते थे। कुछ समय पश्चात बाबा जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी और उनके पास भक्तों की भीड़ रहने लगी। लाला साधु राम जी बताते हैं कि सर्दियों में बाबा जी केवल एक चद्दर ही ओढ़ते थे, भक्त जन तो कुछ भी वस्त्र भोजन श्रद्धा भाव से भेंट करते थे। बाबा जी ने अन्य साधुओं को वितरित करते थे। कुछ भक्तों ने मुझे बताया कि प्रातः काल जब बाबा जी लक्ष्मी नारायण की आरती उतारते थे तो अक्सर वे इतने भाव विभोर हो जाते कि उनके नेत्रों से अनिल अश्रुधारा बहती रहती, परंतु बाबा जी को अपनी स्थिति का भान भी नहीं रहता था। दीनू राम जी ने बताया कि जब मैं पुलिस में नौकरी करता था तो एक दिन पीपल के बाड़े के पास खड़ा होकर बाबा को देख रहा था। बाबा ने संकेत करके मुझे बुलाया और कहा, बैठो दूध पियो, बाबा आपको दूध पिलाएगा। तभी बाबा जी ने मेरे हाथ में दूध का गिलास थाम दिया और मेरे द्वारा वह दूध का गिलास पीना ही था कि मैं सदा सदा के लिए बाबा जी का ही होकर रह गया। एक वर्ष उपरांत बाबा जी स्थान को छोड़कर एक ऐसे स्थान पर चले गए जहाँ पहाड़ी नाले और बड़ी चट्टानों के और कुछ ना था। बाबा जी का कहना था कि बाबा को तो माँ भगवती की उस गुफा की खोज करनी है जहाँ मातेश्वरी उमा ने शिव आराधना की थी। सर्वप्रथम बाबा जी रामाबाई की ओर गए और वहाँ से कुछ नीचे उतरकर पत्थर की गुफा में बैठ गए। वहाँ गुफा अति प्राचीन थी, ग्रीष्म काल में योगी आकर उस गुफा में निवास किया करते थे। बाबा का प्रथम पदार्पण एवं प्राचीन योगी गुफा। बाबा जी ने प्राचीन जैनसेन योगी गुफा में आकर धूना लगाया। बाबा के भक्तों ने शिगेवी गुफा के सामने वाले स्थान को समतल बना दिया। पूर्व की भांति ही यहाँ भी भक्तों का आना जाना आरंभ हो गया। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर नागेश्वर महादेव की स्थापना की गई। स्थापना का रहस्य उद्घाटन करते हुए बाबा ने मुझे एक रोमांचकारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक दिन बाबा धूने के पास बैठा था। अचानक धूने के सामने 5 फन वाले नागराज फन उठाकर बैठ गए। बाबा ने प्रणाम करते हुए कहा, बाबा के पास यही शरीर है, इसे ही ले लो। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, यहाँ पर महादेव की स्थापना करो। बाबा जी अगले दिन प्रातः काल नदी में स्नान करने गए तो हाथ में एक शिवलिंग आ गए। बाबा ने शिवलिंग को लाकर कुटिया में रख दिया तथा पंडित श्री राम को बुलाकर शिवलिंग की प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकलवाया। इस प्रकार 1904 की शिवरात्रि को शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई तथा एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। समीप के ग्रामों व शहरों से भारी जन समूह आया। इस शुभ अवसर पर सामने वाले पहाड़ नदी के उस पार से एक जटाधारी साधु माधवानंद भी आए। 3-4 दिन तक वे बाबा के साथ ही रहे। एक दिन उन्होंने कहा, बाबा जी मैं भी आपके पास रहूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है। अब माधवानंद बाबा के साथ ही रहने लगे और धीरे धीरे 6 माह बीत गए। माधवानंद का व्यवहार आने जाने वाले भक्तों के साथ अच्छा नहीं था, जन सेवा में उसे कोई रुचि नहीं थी। एक दिन उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरे पास कोई आश्रम नहीं है, आप मुझे ये मंदिर दे दो, आप तो महान है, कोई और आश्रम बना सकते हैं। करुणा निधान बाबा ने वह स्थान सहर्ष उसके लिए छोड़ दिया और स्वयं पुनः उसी पीपल के बाड़े पर आकर बैठ गए। जब भक्तों को बाबा जी के वापस आने के कारण का पता चला तो भक्त आग बबूला हो उठे। वे माधवानंद को मारने के लिए उद्युक्त हो गए। बाबा ने उन्हें रोकते हुए बड़े ही शांत स्वर में कहा, बाबा ने खुद ही उसे ये स्थान दे दिया है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी की मधुर वाणी सुनकर सभी भक्त शांत हो गए। अब भक्तों ने उसे शिव मंदिर से लगभग 25 फुट नीचे एक छोटी गुफा में बाबा जी के लिए आसन लगा दिया। ये स्थान आज त्रिमूर्ति धाम है। भक्त जन पगडंडी के रास्ते से होकर बाबा के पास इस नूतन गुफा में आया करते, क्योंकि उसमें सीढ़ियों का निर्माण नहीं हुआ था। गुफा में एक और बाबा का आसन तथा दूसरी ओर धूना था। कर्मयोगी बाबा प्रातः से सायं तक कार्यरत रहते। शहर के कुछ युवक भक्त के काम में बाबा जी का हाथ बंटा थे। गुफा के साथ वाली अन्य गुफाओं को भी सुधारा जाने लगा। गुफा के ऊपर से बहने वाले नाले के पानी को बाबा जी ने कन्या दिशा से ऊपर से ही मोड़ दिया। बाबा जी में सेवा भाव इतना था कि भक्तों को कभी चाय बना कर पिलाते तो कभी खिचड़ी बनाकर खिलाते। श्री बाबा जी ने भक्तों को आहार अलग प्रसन्न करने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा 1965 की शिवरात्रि को सात वाली लंबी गुफा में श्री महादेवी की स्थापना होगी। सभी भक्त सुनकर आनंदित हो उत्साह से ओतप्रोत होकर दिन रात बाबा जी के साथ सेवा कार्य में जुट गए। अखाड़ा बजा रहे थे, किसी लाला ने बाबा जी से कहा कि वे बाबा जी के साथ जाकर श्री महादेवी की मूर्ति वगैरह ले आएंगे। लेकिन शिवरात्रि के ठीक 10 दिन पहले श्री लाला जी ने आकर बताया कि वे किसी अपरिहार्य कार्यवश बाबा के साथ मूर्ति लेने नहीं जा सकेंगे। बाबा जी के शब्दों में जब बाबा को ये पता चला कि लाला जी ने बाबा के साथ जाने से इनकार कर दिया है तो बाबा परेशान हो गया। सोचने लगा ये क्या होगा। अच्छा माँ जैसे तेरी इच्छा, हे माँ यदि शिवरात्रि के दिन तेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होगी तो बाबा की समाधि बनेगी। सारा दिन इसी उधेड़बुन में निकल गया। रात्रि को जब बाबा उदास मन से गुफा के बाहर वाली चट्टान पर बैठे हुए थे तो सामने वाली सड़क पर एक जीप आकर रुकी। जीप में से दो पुरुष एक महिला उतरे और पगडंडी के रास्ते से होते हुए बाबा के पास पहुंचे। समीप आने पर बाबा ने उन्हें पहचाना कि ये तो श्री अवतार चंद भोपला व उनकी धर्म पत्नी राजुलाई जी है। उन्होंने बाबा के सम्मुख आकर प्रणाम किया और कहने लगे बाबा जी हम भी आपके साथ जाएंगे तथा माते श्री का मूर्ति बिगड़ लाएंगे। बाबा ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया तो माँ राजुलाई ने तुरंत हाथों से 11 सोने की चूड़ियां उतार कर बाबा जी के सामने रख दी तथा कहा बाबा जी ऐसी क्या बात है, पैसे की कोई कमी नहीं, आपका संकल्प अवश्य पूरा होगा। बाबा को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि श्री महादेवी जी बाबा के संकल्प को पूरा करने के लिए आई है। हरिद्वार से माँ भगवती का मूर्ति विग्रह लाया गया तथा शिवरात्रि को ही बाबा के संकल्पानुसार हर्षोल्लास के साथ माँ भगवती की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई। शहर तथा ग्रामों से श्रद्धालु भक्तों का पार जल समूह भगवती के दर्शनों हेतु उमड़ पड़ा। सबके मुंह से एक ही बात निकल रही थी कि यहाँ वैष्णो माता ही प्रकट हुई है। इस प्रकार भक्तों की श्रद्धा अनुसार इस पावन भूमि का नाम वैष्णो माता मंदिर पड़ गया। बाबा जी ने स्थान का नाम पहले से ही श्री महादेवी तीर्थ रखा था क्योंकि महादेवी ने वर्षों पूर्व इसी स्थान पर शिव की आराधना की थी। सतपुरुष इस धरा पर जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं और दे जाते हैं विश्व को एक महान देह। बाबा जी ऐसे एक महान सतपुरुष थे जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया, यही पले बड़े हुए और विश्व को दे गए एक बड़ी महान श्री महादेवी तीर्थ। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय माता दी।